हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 251। इन सब बातों में वे दोनों ही अनय वाली बात भूल गए। कुछ देर साथ समय बिताने के बाद सुनैना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है आदि। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अब तो शाम होने वाली है। अरे तो क्यों नहीं खाया यार, ऐसा क्यों करती हो और अब बता रही हो? चलो नीचे चलकर काका को बोलते हैं, वे तुम्हारे लिए कुछ तो बनवा देंगे, या फिर मैं ऑर्डर कर लूँ, वो जल्दी आ जाएगा। आदित्य इधर उधर अपना मोबाइल फोन ढूंढते हुए बोला, मोबाइल फोन से तो शायद कोई दुश्मनी ही है तुम्हारी। मुझे नहीं लगता तुम्हें याद भी होगा तुम्हारा मोबाइल फोन कहाँ फेंका है तुमने। वैसे नीचे ही चलते हैं, स्वीटी और रवि भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों भी तब से परेशान हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, सुनैना ने उसे समझाते हुए कहा। सबके बारे में सोचकर आदित्य को भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसे लगा शायद वो अपने डर, इनसिक्योरिटीज और अपनी समस्याओं के आगे दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। इतना सोचते हुए उसने सुनैना का हाथ पकड़कर हाँ में सिर हिलाया। वे दोनों कमरे से निकलकर नीचे आ गए, जहाँ रवि और स्वीटी पहले से ही बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। स्वीटी आदित्य को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसने अपनी खुशी छुपाकर नाराज होने का नाटक करते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आदित्य को किसी को इस तरह मनाना और समझाना नहीं आता था, इसलिए उसने भी स्वीटी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भवानी काका से उन सब के लिए खाना लगाने को कहा। आदित्य की बात सुनकर भवानी काका वहाँ से चले गए। रवि ने आदित्य और सुनैना की तरफ तसल्ली से देखा। स्वीटी ने खुद ही आकर शिकायत करते हुए कहा, भैया मैं आपसे नाराज हूँ, ऐसा कोई करता है क्या? कहाँ गायब हो गए थे? आपको पता है भाभी तो बेहोश भी हो गई थी सुबह। स्वीटी की ये बात सुनकर आदित्य हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगा, क्योंकि सुनैना ने इतनी देर बात करने के बाद भी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। आदित्य की नजरें अपने ऊपर देखकर सुनैना दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन सबके सामने आदित्य ने भी सुनैना को कुछ नहीं कहा और आगे आकर स्वीटी से बोला, अब तुम क्यों नाराज हो स्वीटी? पहले ही तुम्हारी भाभी की नाराजगी दूर करते करते थक गया हूँ, अब तुम कैसे मानोगी? बस एक छोटे से हग और प्रॉमिस से स्वीटी ने बच्चों की तरह क्यूट फेस बनाकर मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने अपनी बाहें खोल दी और स्वीटी जल्दी से आकर उसके गले लग गई, फिर नजर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, और एक प्रॉमिस भी करना है आपको। हाँ हाँ बोलो क्या है? आदित्य ने एकदम लापरवाही से पूछा। स्वीटी उससे पूरी तरह दूर होकर उसके सामने खड़ी हो गई और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे नहीं, पहले मेरे हाथ पर हाथ रखो और फिर मैं जो बोलूंगी उसे रिपीट करिएगा। ये क्या बचपना है स्वीटी, सुनैना तुम समझाओ इसे, आदित्य ने मुंह बनाकर सुनैना से शिकायत करते हुए कहा। मैं क्या समझाऊं, करो प्रॉमिस, भले ही स्वीटी तुमसे छोटी है लेकिन फिर भी तुमसे बहुत ज्यादा समझदार है वो, सुनैना ने एकदम हाथ खड़े करते हुए कहा। वो पूरी तरह से स्वीटी की तरफ थी। सुनैना भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच भाभी, और भाई हाथ आगे करो, आप कोई बचपना नहीं है, मैं बस इतना सा प्रॉमिस करने को कह रही हूँ कि आज के बाद आप हम में से किसी को भी छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करोगे, और अगर कहीं भी जरूरी काम से जाओगे तो बताकर जाओगे, मुझे, भाभी को या फिर गीता दी, रवि भैया, किसी को भी, बस बिना बताए नहीं जाना है। हाँ ये प्रॉमिस तो तुम्हें करना ही चाहिए, बिल्कुल सही है स्वीटी, मैं भी परेशान हो गई हूँ तुम्हारे भैया से, सुनैना ने मुंह बनाकर कहा। आदित्य में भी जैसे हार मानते हुए स्वीटी के हाथ पर अपना हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा, ओके आई प्रॉमिस, अब से मैं बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगा जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, हैप्पी नाउ? यस वेरी हैप्पी, स्वीटी ने बड़ी सी स्माइल चेहरे पर लाते हुए कहा। रवि ने भी आगे आते हुए आदित्य से हॉस्पिटल और उसकी बीमारी के बारे में बात की। आदित्य नहीं चाहता था कि रवि सुनैना के सामने इस बारे में कोई बात करे, लेकिन फिर रवि ने उसे बताया कि सुनैना को सब कुछ पता चल चुका है। सुनैना भी सब कुछ जानती थी और इसी तरह से आदित्य की तरफ देख रही थी। वे सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी भवानी काका ने आकर उन्हें बताया कि डिनर तैयार है और टेबल पर लग चुका है, तो सब तैयार होकर एक साथ ही खाना खाने के लिए आ गए। रवि वहाँ से वापस जाना चाहता था, लेकिन सुनैना को पता था कि वो भी उसके साथ ही सुबह से परेशान था, इसलिए उसने आदित्य से कहकर रवि को भी डिनर के लिए रोक लिया। उन सब ने साथ में डिनर किया और फिर वहाँ से अपने विला के लिए निकल गए। रवि कैब बुक करके वहाँ से निकल गया क्योंकि उसका घर ऑपोजिट साइड पर था। बाकी तीनों को एक ही जगह जाना था, लेकिन उस बंगले से बाहर निकलकर सुनैना ने एक बार पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा और अपने मन में कहा, आदित्य के सारे डर और इनसिक्योरिटीज दूर करके ही अब मैं उसे वापस यहाँ पर लेकर आऊंगी और तब हमारी सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत यादें ही यहाँ पर बनेंगी। सुनैना ने ये प्रॉमिस अपने आप से किया। फिर आदित्य ने उसे आवाज़ देकर बुलाया, क्या देख रही हो सोना? नहीं, कुछ नहीं, उसकी आवाज़ सुनकर सुनैना ने कहा और कार में आदित्य के साथ वाली सीट पर बैठ गई, क्योंकि स्वीटी पहले ही बैक सीट पर जाकर बैठ गई थी। आदित्य ने कार स्टार्ट की। सुनैना ने उससे पूछा, एक मिनट रुको, तुमने ड्रिंक तो नहीं की है ना? मैं नहीं चाहती रास्ते में पुलिस ने रोक लिया और फिर। अरे नहीं, तुम्हें मैं नशे में लग रहा हूँ क्या? वैसे मैंने वो सुबह जब मैं यहाँ पर आया था तभी थोड़ी सी ड्रिंक की थी, अभी तो इतनी देर हो गई है। आदित्य ने एकदम से ये बात बोल दी। सुनैना उसे गुस्से में घूर कर देखने लगी। पीछे बैठी स्वीटी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी छुपाई। अरे यार, मैं नहीं करना चाहता था ड्रिंक करना, वो तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई, थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल तो बस, लेकिन आई स्वेयर ज्यादा नहीं पी मैंने। और तुम अब ऐसा मत देखो यार, डर लग रहा है। आदित्य अपनी जगह से थोड़ा पीछे होते हुए एकदम डरा हुआ फेस बनाकर बोला। सुनैना ने नाराजगी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। आदित्य ने भी उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप ड्राइविंग शुरू की। कुछ ही देर में वे लोग अपने विला वापस आ गए। उन सबको साथ में घर वापस आता देखकर गीता ने भी मन ही मन राहत की सांस ली। वो भी अब तक उन सबको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि आदित्य के मिलने के बाद भी किसी ने उन्हें फोन करके नहीं बताया था, सब उनके बारे में भूल ही गए थे। दूसरी तरफ अनय पूरा दिन यहाँ से वहाँ ड्राइव करता रहा। फोन पर अपनी पत्नी से हुई बहस के बाद उसका घर वापस जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसे पता था वो घर वापस जाएगा तो उसकी पत्नी फिर से शुरू हो जाएगी और इस बात को लेकर उससे लड़ाई झगड़ा जरूर करेगी। वैसे अनय की मैरिड लाइफ में उसकी अपनी पत्नी से रोज रोज झगड़ा होना कोई नई बात नहीं थी। असल में उन दोनों की शादी शादी नहीं, एक समझौता और एक तरह से बिजनेस डील थी, जिसमें शुरू से लेकर अब तक कुछ भी अच्छा और सही नहीं हुआ है। अनय ही इस रिश्ते में सबसे ज्यादा सफर कर रहा था, क्योंकि मनस्वी उसे कभी भी अच्छी तरह और अपने पति जैसा ट्रीट नहीं करती थी। वो हमेशा ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे उसने अनय से शादी करके उस पर एहसान किया है। अनय उसके ऐसे बर्ताव की वजह जानता था, क्योंकि कहीं न कहीं ये सही भी था। ये सब सोचते हुए अनय ने एक गहरी सांस ली और अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में समय देखा। रात के 8 बजने वाले थे। इतना समय हो गया था, अब तो उसे ना चाहते हुए भी घर वापस जाना ही पड़ेगा। तो वो बहुत बेमन से अपने घर जाने के लिए कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद जब वो घर वापस पहुंचा, तब उसने देखा कि घर में एक बहुत ही अजीब सा शांति या फिर सन्नाटे भरा माहौल है, जो कि अनय को तूफान आने से पहले वाली शांति जैसा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी के रहते घर में इतनी शांति तो होती ही नहीं थी, खासकर जब वो घर वापस आता था। उसकी पत्नी किसी न किसी बात को लेकर तुरंत ही शुरू हो जाती थी। कुल मिलाकर अनय को भी लगता था कि मनस्वी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और बस मजबूरी में ही उसके साथ रह रही है। ये सब सोचते हुए अनय अपने आसपास देखा और तभी उसे सामने से आती हुई अपनी पत्नी नजर आई। हे बेबी, यू आर बैक, हाउ वॉज योर डे? मनस्वी एकदम से सामने आकर मुस्कुराते हुए बोली। अनय अपना कोट उतार रहा था, इसमें भी वो उसकी मदद करने लगी और उसने अनय का कोट उतारकर अपने हाथ में पकड़ लिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। अनय को अपनी आँखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने अपनी आँखें बंद करके दोबारा से खोलते हुए कहा, तुम कौन हो? Who are you? अनय के इस सवाल पर मनस्वी ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने दांत पीस कर बोली, कैसी बातें कर रहे हो बेबी? कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करके आए हो क्या? तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? इतना बोलते हुए मनस्वी उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका माथा छूकर चेक करने वाली थी कि तभी अनय ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वह अभी भी हैरानी से कुछ समझने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। मनस्वी ने जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़वाते हुए वापस ले लिया। तभी उसे पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। अहम अहम, सॉरी बेटा बिना बताए आने के लिए, लेकिन मैं तो बस किसी काम से यहाँ पर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों से भी मिल लेती हूँ। पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, तो अनय ने मनस्वी के दाहिनी ओर से पीछे देखा तो वहाँ पर मनस्वी की माँ खड़ी हुई थी और वह उन दोनों की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। क्रमशः